एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, वो है जोसेफ कैंपेल की एक बहुत ही मशहूर, कह सकते हैं कालजयी रचना, द पावर ऑफ मिथ, मतलब मिथकों की शक्ति।
हाँ नमस्कार, और ये सिर्फ जैसे आपने कहा पुरानी कहानियों का जिक्र भार नहीं है। कैंपबेल हमें ये दिखाते हैं कि ये मिथक, ये जो प्राचीन कथाएं हैं, वो आज भी उतनी ही जिंदा और जरूरी हैं, शायद शायद पहले से भी ज्यादा। ये हमारे अंदर की दुनिया को समझने का और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ मायने ढूंढने का एक तरह से नक्शा है।
बिल्कुल, आज के दौर में जब बहुत से लोग ना जिंदगी में एक तरह का खालीपन सा महसूस करते हैं, लगता है कि चीजें तो हैं पर कुछ कमी है।
सही बात है।
तब कैंपबेल की बाती एक ताजी हवा की तरह लगती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि भाई, हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने जीवन के जिन बड़े सवालों से जूझकर जो ज्ञान पाया था, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है।
हाँ,
तो चलिए, आज इसी प्राचीन ज्ञान की आज के जमाने में क्या प्रासंगिकता है, इसी को थोड़ा टटोलते हैं।
जरूर, तो शुरुआत लेखक से ही करते हैं। जोसेफ कैंपबेल 1904 में जन्मे, 1987 तक रहे। वो 20वीं सदी के एक ऐसे प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया भर की पौराणिक कथाओं और धर्मों के अध्ययन में लगा दिया। उन्हें सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन कहानियों के पीछे जो एक साझा इंसानी सच छुपा है ना, उसको खोजने में थी।
अच्छा, उनकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मध्ययुगीन साहित्य में मास्टर्स किया, लेकिन फिर वो जो औपचारिक एकेडमिक दुनिया होती है ना,
हाँ,
उससे थोड़ा हटकर,
हाँ, थोड़ा अलग रास्ता चुना।
हाँ, खुद ही मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, दुनिया भर के धर्म, इन सबका गहरा अध्ययन किया। और इसी अध्ययन से 1949 में उनकी वो किताब निकली, द हीलो विद अ थाउजेंड फेसेस।
हाँ, बहुत ही प्रभावशाली किताब।
और इसी ने दुनिया को मोनोमिथ या नायक की सार्वभौमिक यात्रा का विचार दिया। ये कितना कमाल का आइडिया है कि दुनिया की इतनी अलग अलग संस्कृतियों में नायकों की कहानियां एक ही मूल ढांचे पर बनी है।
बिल्कुल, और उनका नजरिया अनोखा इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रुके। उन्होंने अकादमिक शोध को कार्ल यंग जैसे मनोविज्ञानिकों की जो अंतर्दृष्टि थी।
हाँ, यंग का प्रभाव तो साफ दिखता है।
हाँ बिल्कुल, खासकर वो आर्केटाइप वाली बात, मतलब वो मूल किरदार या स्थितियां जो हर कहानी में दिखती हैं, जैसे हीरो, मेंटोर, विलेन, परछाई। और सामूहिक अचेतन की अवधारणा, यानी हम सब की वो गहरी साझी यादें और प्रतीक जो पीढ़ियों से हमारे अंदर हैं और सपनों मिथकों में बाहर आती हैं, इन सबको उन्होंने जोड़ा।
और कमाल की बात ये कि इतने गहरे, थोड़े जटिल विचारों को भी उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाया। वो पत्रकार बिल मॉयर्स के साथ,
हाँ,
उनकी एक पीबीएस टेलीविजन सीरीज थी ना,
हाँ, बहुत मशहूर हुई थी वो,
उसी पर ये किताब आधारित है। और वो इतनी लोकप्रिय हुई, यहाँ तक कि जॉर्ज लुकास ने खुद माना कि स्टार वॉर्स की कहानी गढ़ने में कैंपबेल के विचारों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली।
सोचिए, एक अकादमिक विद्वान के विचार सिनेमा के पर्दे पर इस तरह जिंदा हो उठे,
है ना। तो ये किताब द पावर ऑफ मिथ आखिर हमें सिखाती क्या है?
देखिए, ये असल में कैंपबेल और बिल मॉयर्स के बीच हुई बातचीत का एक संग्रह है, तो इसका अंदाज बहुत ही सहज है, सुलभ है, जैसे दो ज्ञानी दोस्त बैठकर गहरे विषयों पर बात कर रहे हों।
हाँ, पढ़ने में बोझिल नहीं लगते।
बिल्कुल नहीं, ये किताब हमें पौराणिक कथाओं की उस छुपी हुई भाषा से परिचित कराती है जिसे समझ कर हम अपने जीवन को ज्यादा गहराई से जी सकते हैं, ऐसा कैंपबेल का मानना था।
यह हमें एक सफर पर ले जाती है, कैसे हजारों साल पहले इंसानों ने दुनिया को समझने की कोशिश की, कैसे मिथक बने और कैसे वो आज भी हमारे मनोविज्ञान, हमारे समाज और हमारी रूहानी तलाश को प्रभावित कर रहे हैं।
हाँ, कैंपबेल यही दिखाते हैं कि चाहे अफ्रीका की कहानी हो या भारत की या यूनान की, जीवन के जो बड़े रहस्य हैं, जन्म, मृत्यु, प्रेम, दुख, बदलाव, इन सब पर इंसानों ने मिलती जुलती कहानियों के जरिए ही रोशनी डालने की कोशिश की है।
और किताब का सबसे बड़ा दावा क्या है, मतलब सेंट्रल आइडिया?
वो ये कि मिथकों को कभी भी सिर्फ इतिहास या विज्ञान की तरह अक्षरशः सच नहीं मानना चाहिए। कैंपबेल इस पर बहुत जोर देते हैं कि मिथक असल में मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों के प्रतीक हैं, रूपक हैं, वो हमारी अंदरूनी दुनिया के नक्शे की तरह हैं।
अच्छा, जैसे मैप्स हो हमारी साइकी के।
गर है, ये किताब उन सबके लिए है जो जिंदगी में सतही चीजों से आगे बढ़कर गहरे अर्थ ढूंढ रहे हैं।
चलिए, तो अब किताब के कुछ मुख्य विषयों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथक की शक्ति और उसके उद्देश्य की। कैंबल कहते हैं कि मिथक सिर्फ बच्चों को सुलाने वाली कहानियां नहीं है।
हाँ, ये अस्तित्व के रहस्य को समझने के शक्तिशाली औजार हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति तब खुलती है जब हम उन्हें प्रतीकात्मक रूप से समझते हैं, न कि शब्दशः।
हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है, शाब्दिक सत्य और प्रतीकात्मक सत्य। जब हम किसी पौराणिक कहानी को बस एक सच्ची घटना मान लेते हैं तो उसका गहरा मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक संदेश कहीं खो जाता है।
बिल्कुल, कैंबल ने मिथकों के चार मुख्य काम बताए हैं। पहला, ब्रह्मांड के रहस्य और सुंदरता के प्रति हमारे मन में विस्मय, एक तरह का आश्चर्य जगाना। हाँ, और दूसरा, हमें दुनिया की एक समझ देना, एक कॉस्मोलॉजी देना कि सब कुछ कैसे काम करता है, हमारा स्थान क्या है।
तीसरा काम थोड़ा सोचने वाला है। कैंबल कहते हैं कि मिथक समाज के नियमों और ढांचे को सही ठहराने और उसे बनाए रखने का काम भी करते हैं।
हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समाज को कौन से आधुनिक मिथक चला रहे हैं और किन नियमों को सही ठहरा रहे हैं।
सही बात है। और चौथा काम?
चौथा काम है व्यक्ति को जीवन के अलग अलग पड़ावों, मुश्किलों और बदलावों से गुजरने में मार्गदर्शन देना, जैसे एक गाइडबुक हो जीवन के सफर के लिए।
और इसी चौथे काम से जुड़ा है कैंबल का सबसे मशहूर आइडिया, नायक की यात्रा, यानी द हीरोज जर्नी या मोनोमिथ।
हाँ, ये एक ऐसा कहानी का ढांचा है जो उन्हें दुनिया भर की अनगिनत कहानियों, मिथकों और यहाँ तक कि सपनों में भी नजर आया। इसके मुख्य तौर पर तीन बड़े चरण होते हैं।
पहला है अलगाव या सेपरेशन। इसमें कहानी का नायक अपनी रोजमर्रा की साधारण दुनिया में जीरा होता है, तभी उसे एक बुलावा आता है किसी सफर पर निकलने का, कोई चुनौती स्वीकार करने का।
हाँ, अक्सर नायक पहले हिचकिचाता है, मना करता है, कॉल टू एडवेंचर जिसे कहते हैं।
हाँ, लेकिन फिर कोई मददगार या गुरु, मेंटर फिगर उसे प्रेरित करता है और वो अपनी जानी पहचानी दुनिया की दहलीज पार करके एक अनजाने रहस्यमयी क्षेत्र में कदम रखता है, जैसे घर का आराम छोड़कर किसी मुश्किल यात्रा पर निकलना।
बिल्कुल। दूसरा चरण है दीक्षा या इनिशिएशन। ये वो पड़ाव है जहां असली परीक्षा होती है। नायक को तरह तरह की चुनौतियों, राक्षसों का सामना करना पड़ता है, जो बाहरी भी हो सकते हैं और अंदरूनी डर या कमजोरियां भी।
अच्छा, तो राक्षस सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने सबसे बड़े डर, अपने ड्रैगन से लड़ना पड़ता है। इस संघर्ष से गुजरकर ही उसे कोई अनमोल चीज मिलती है, कोई ज्ञान, कोई शक्ति, कोई वरदान या खजाना। ये असल में अंदरूनी बदलाव का चरण है।
और तीसरा चरण है वापसी, रिटर्न। अब नायक को उस पाए हुए ज्ञान या खजाने को लेकर वापस अपनी साधारण दुनिया में लौटना होता है, ताकि उसका फायदा उसके समाज को मिल सके।
लेकिन ये वापसी भी आसान नहीं होती। कभी दुनिया उसे पहचानती नहीं, कभी वो खुद दुनिया में फिट नहीं हो पाता। ये पूरी यात्रा सिर्फ बाहरी एडवेंचर नहीं है, ये हमारे अंदर के मनोवैज्ञानिक विकास का, हमारे बड़े होने, ज्यादा समझदार और संपूर्ण बनने का प्रतीक है।
जैसे बुद्ध का महल छोड़ना, ज्ञान पाना और लौटकर उपदेश देना।
हाँ, या ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना और पुनर्जीवित होना।
या फिर आधुनिक फिल्मों में देखें तो हैरी पॉटर या लूक स्काईवॉकर का सफर।
हाँ, ये सब इसी मूल पैटर्न की अलग अलग झलकियां हैं। पर क्या ये वापसी हमेशा कामयाब होती है? कई कहानियों में नायक लौट तो आता है, पर उसका समाज उसे या उसके लाए ज्ञान को अपनाने को तैयार नहीं होता।
हाँ, ये भी एक चुनौती है। कैंबल शायद कहते कि यही नायक की असली परीक्षा होती है, क्या वो फिर भी अपने सच पर कायम रहता है।
ये पूरी यात्रा एक व्यक्ति के इंडिविजुएशन की प्रक्रिया है, यानी भीड़ से अलग होकर अपनी असली पहचान पाने का सफर।
कैंबल फिर हमें और पीछे ले जाते हैं, पहले कहानीकारों और मिथकों के विकास की ओर। वो बताते हैं कि कैसे हजारों साल पहले, जब इंसान शिकारी संग्राहक था या जब उसने खेती करना शुरू किया, तो उसने अपने आसपास की दुनिया, प्रकृति, जानवर, मौसम, इन सब को समझने के लिए कहानियां गढ़ी।
हाँ, और शुरुआती मिथक अक्सर धरती माँ यानी ड्रेट गॉडेस से जुड़े होते थे, जो जीवन देने वाली, पालन करने वाली और वापस लेने लेने वाली शक्ति का प्रतीक थी। जीवन का चक्र, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इन मिथकों का केंद्र था।
फिर धीरे धीरे कैंपल के अनुसार पितृसत्तात्मक समाज उभरे। इनके देवता अक्सर आकाश से जुड़े थे, शक्तिशाली, नियम बनाने वाले पिता समान देवता, जैसे यूनान के ज्यूस
या इब्रानी परंपरा के यहोवा। हाँ, इन मिथकों में अक्सर आकाश देवता धरती देवी पर विजय पाते दिखाए जाते हैं। कैंपेल का मानना था कि इस बदलाव का पश्चिमी सभ्यता के प्रकृति और स्त्री शक्ति के प्रति नजरिए पर बहुत गहरा असर पड़ा, एक तरह का असंतुलन पैदा हुआ।
नायक की यात्रा में अक्सर त्याग और कुर्बानी की बात आती है, और यही कैंपेल हमें बलिदान और आनंद, सैक्रिफाइस एंड ब्लिस के गहरे और थोड़े विरोधाभासी लगने वाले संबंध पर सोचने को मजबूर करते हैं। बलिदान को हम अक्सर दुख, दर्द से जोड़ते हैं,
हाँ, या किसी चीज को छोड़ने से, पर कैंपेल इसे जीवन के एक जरूरी नियम की तरह देखते हैं। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराने को छोड़ना ही पड़ता है, जैसे बीज को मरना पड़ता है ताकि पौधा जी सके।
और वो इसे सिर्फ बाहरी चीजों के त्याग तक सीमित नहीं रखते,
नहीं, इसे वो हमारे अंदरूनी मनोवैज्ञानिक बदलाव से जोड़ते हैं। एक ज्यादा परिपक्व, ज्यादा असली स्व के जन्म के लिए हमारे पुराने सीमित अहम का, ईगो का बलिदान जरूरी है, और यहीं से उनका वो मशहूर मंत्र आता है, फॉलो योर ब्लिस,
अपने अंदर के गहरे आनंद, अपनी सच्ची पुकार का पीछा करो।
हाँ, ये सिर्फ मौज मस्ती या सुख ढूंढना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि कौन सा काम, कौन सा रास्ता आपको अंदर से जिंदा महसूस कराता है, आपको आपकी असलियत से जोड़ता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए साहस और त्याग की जरूरत पड़ सकती है।
तो ये आपकी अपनी नायक यात्रा का बुलावा है, जिसे सुनना और मानना ही असली आनंद है।
बिल्कुल, इसे भारत में स्वधर्म की खोज से जोड़ा जा सकता है, मतलब सिर्फ वो काम नहीं जो हमें पसंद है, बल्कि वो कर्तव्य या जीवन पथ जो हमारी प्रकृति और समाज में हमारी भूमिका के हिसाब से सबसे सही है, और जिसे निभाने में गहरा संतोष मिलता है।
कैंपेल स्त्री शक्ति के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं, जिसे वो देवी का उपहार, गिफ्ट ऑफ द गॉडेस कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में देवी के कितने विविध और शक्तिशाली रूप मिलते हैं।
हाँ, वो माँ है, पोषण देने वाली, वो कुवारी है, स्वतंत्र और पवित्र, और वो विनाशक भी है, जैसे भारत में काली माँ, जो पुराने को नष्ट करके नए का रास्ता बनाती है। देवी प्रकृति अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और जीवन की रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है।
और कैंपेल मानते थे कि आधुनिक पश्चिमी समाज ने, जो ज्यादातर पुरुष प्रधान देवताओं और तर्क पर आधारित रहा है, इस स्त्री सिद्धांत की अनदेखी की है।
हाँ, इससे न सिर्फ समाज में बल्कि हमारे अंदर भी एक असंतुलन पैदा हुआ है। प्रकृति से हमारा रिश्ता टूटा है, अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर भरोसा कम हुआ है। कैंपेल के अनुसार इस संतुलन को फिर से पाना जरूरी है, दोनों स्त्री और पुरुष सिद्धांतों का सम्मान करके।
कैंपेल प्रेम और विवाह की कहानियों को भी बड़े दिलचस्प मिथकी नजरिए से देखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे प्रेम की अलग अलग धारणाएं विकसित हुई, जैसे यूनानी एरोस यानी जुनून भरा प्यार, और अगापे यानी निस्वार्थ आध्यात्मिक प्रेम।
हाँ, और वो पश्चिमी दुनिया की रोमांटिक लव की परंपरा पर खास ध्यान देते हैं, जिसकी जड़ें मध्ययुग के शूरवीरों और उनकी प्रेमिकाओं की कहानियों में है। इसमें प्रेम एक व्यक्ति पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वो प्रेमी या प्रेमिका ही आपके लिए पूरी दुनिया का प्रतीक बन जाती है।
और विवाह कैंपेल के लिए सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं,
नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक अनुष्ठान है। ये वो मौका है जहां दो अलग अलग इंसान अपने अपने अहं का थोड़ा त्याग करते हैं, नई एकीकृत इकाई बनने के लिए। ये एक तरह से परमात्मा या परम सत्य के साथ एकाकार होने के रहस्यमय अनुभव का मानवीय रूपक बन जाता है। इसमें चुनौती भी है और गहरा इनाम भी।
किताब के आखिरी हिस्सों में कैंपेल हमें अनंत काल के मुखौटे, मास्क्स ऑफ इटर्निटी जैसे और भी गहरे विषयों की ओर ले जाते हैं। यहां बात होती है मृत्यु की, मृत्यु के भय से परे जाने की, और उस शाश्वत असीम शक्ति से जुड़ने की, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
हाँ, और यही कैंपेल का वो बहुत शक्तिशाली रूपक आता है, ईश्वर के मुखौटे।
इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि दुनिया भर के जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी धार्मिक प्रणालियां हैं, वो सब असल में एक ही परम अवर्णनीय रहस्य को समझने और दर्शाने की अलग अलग कोशिशें हैं, जैसे एक ही चेहरे पर अलग अलग मुखौटे। हर संस्कृति अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से उस परम सत्य को एक रूप, एक कहानी देती है।
खतरा तब होता है, कैंपेल कहते हैं, जब हम मुखौटे को ही असली चेहरा समझ बैठते हैं।
बिल्कुल, यानी जब हम अपने ही धर्म या देवता को एकमात्र सच मान लेते हैं और दूसरों को झूठा समझने लगते हैं, यहीं से कट्टरता और संघर्ष जन्म लेते हैं।
तो कैंपेल हमें एक ज्यादा सहिष्णु और उदार नजरिया अपनाने की प्रेरणा देते हैं कि हम सभी धर्मों और मिथकों को एक ही महान आध्यात्मिक भाषा की अलग अलग बोलियों की तरह देखें, सब उसी एक परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं।
सही कहा। तो इस पूरी ज्ञानवर्धक चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या टेकअवे क्या निकलते हैं? मेरे लिए पहला और सबसे बुनियादी है मिथक की सार्वभौमिकता।
हाँ, ये तो है।
ये जानकर हैरानी होती है कि हजारों साल और मीलों की दूरी के बावजूद इंसान ने जीवन को समझने के लिए एक जैसे ही पैटर्न, खासकर नायक की यात्रा का इस्तेमाल किया है।
ये हमारे साझा इंसान होने का सबूत है।
बिल्कुल। दूसरा, मिथक हमारे अंदरूनी गाइड हैं। ये सिर्फ बाहरी दुनिया की कहानियां नहीं, बल्कि हमारे मन की, हमारी आत्मा की बनावट को दिखाते हैं। जैसे युंग ने कहा, ये इंडिविजुएशन यानी खुद को पूरी तरह जानने और बनने की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं।
हाँ, और हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को, चाहे वो परीक्षा हो, नौकरी बदलना हो या कोई निजी संकट, उसे नायक की यात्रा के एक चरण की तरह देख सकते हैं।
ये सोच ही हिम्मत दे सकती है।
सही। तीसरा, कैम्बल का वो सरल लेकिन गहरा मंत्र, फॉलो योर ब्लिस।
हाँ, अपनी सच्ची पुकार को पहचानो और उस पर चलो। ये सिर्फ जो अच्छा लगे वो करो नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस कंपास को ढूंढना है जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाए। भारत में जैसे कहते हैं, स्वधर्म का पालन करना, वो करना जिसके लिए आप बने हैं, जिसमें आपको सार्थकता महसूस होती है।
चौथा, रूपक या प्रतीक की अहमियत। मिथकों की भाषा तर्क की नहीं, प्रतीक की है। उन्हें शब्दशा लेना उनकी गहराई को खत्म कर देता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, त्योहारों में, रीति रिवाजों में कितने ही प्रतीक छिपे हैं। उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करना हमारे जीवन को ज्यादा समृद्ध बना सकता है।
और पांचवा, आज की दुनिया में मिथक की जरूरत। ऐसे समय में जब विज्ञान और तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन बहुत से लोग जीवन में अर्थ और दिशा की कमी महसूस करते हैं, कैम्बेल हमें याद दिलाते हैं कि मिथक हमें वो खोया हुआ संबंध, वो बड़ी कहानी दे सकते हैं जिससे जुड़कर हमें लगे कि हमारा जीवन भी मायने रखता है।
ये किताब ऐसे विचारों और पंक्तियों से भरी है जो सोचने पर मजबूर करती हैं और याद रह जाती हैं। कुछ पर बात करें, एक तो वही, फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स वेयर देयर वर ओनली वॉल्स।
हाँ, अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड वहां दरवाजे खोल देगा जहां केवल दीवारें थीं। ये सिर्फ अच्छा लगने वाली बात नहीं, इसमें एक गहरा विश्वास छुपा है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो कायनात भी आपकी मदद करती है।
बिल्कुल। और दूसरा, मिथ्स अर पब्लिक ड्रीम्स, ड्रीम्स अर प्राइवेट मिथ्स। मिथक सार्वजनिक सपने हैं, सपने निजी मिथक हैं। क्या कमाल की बात है,
है ना? ये हमारे व्यक्तिगत सपनों और पूरी संस्कृति के साझा मिथकों के बीच एक पुल बनाता है। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, प्रतीकों की भाषा, जो हमारे सामूहिक अचेतन से निकलती है।
तीसरा भी बहुत शक्तिशाली है, द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जिस गुफा में प्रवेश करने से आप डरते हैं, उसी में वो खजाना है जिसे आप ढूंढ रहे हैं।
हाँ, ये सीधे सीधे नायक की यात्रा से जुड़ता है। ये कहता है कि हमारी असली तरक्की, हमारा असली खजाना वहीं छुपा है जहां जाने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारी चुनौतियां, हमारी कमजोरियां, उनका सामना करने से ही हम आगे बढ़ते हैं।
और चौथा, जो शायद सबका सार है, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफटाइम इज बीइंग हु यू आर। जीवन भर का सौभाग्य वही होना है जो आप वास्तव में हैं।
हाँ, बाहरी उम्मीदों, सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को जानना और जीना, यही शायद जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, नायक की यात्रा का अंतिम लक्ष्य।
तो इन सब गहरी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? एक तरीका तो है व्यक्तिगत विकास के नजरिए से देखना। जीवन में जब भी कोई बड़ा मोड़ आए, नौकरी छूटना, नया रिश्ता बनना, शहर बदलना, कोई बीमारी, उसे नायक की यात्रा के एक चरण की तरह देखें।
हाँ, पूछें खुद से, क्या ये एक बुलावा है? क्या ये परीक्षा का समय है? क्या अब वापसी करके सीखे हुए सबक को जीवन में लागू करने का वक्त है? ये फ्रेमवर्क हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है।
दूसरा, अर्थ की तलाश में। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से पूछें, क्या ये मेरे ब्लिस से जुड़ता है? क्या ये काम मुझे ऊर्जा देता है या मेरी ऊर्जा छीनता है? क्या ये रास्ता मुझे मेरी असलियत के करीब ले जा रहा है?
हाँ, ये सवाल हमें ज्यादा प्रामाणिक चुनाव करने में मदद कर सकते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, पर सोचिए, अगर किसी का ब्लिस ऐसी चीज में हो जिसे समाज बिल्कुल स्वीकार ना करे। कैम्पेल कहते हैं कि साहस वहीं चाहिए होता है।
सही बात है। रिश्तों को भी हम इस नजरिए से देख सकते हैं। प्रेम और विवाह को सिर्फ जरूरतों का लेन देन न मानकर एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखना, अपने साथी में सिर्फ कमियां नहीं बल्कि दैवीय गुणों को भी देखना,
और जब मतभेद हों तो उन्हें अहंकार की लड़ाई बनाने की बजाय एक दूसरे को बेहतर समझने और साथ में विकसित होने का अवसर मानना। स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं के संतुलन को अपने अंदर और रिश्ते में साधना भी जरूरी है।
बिल्कुल, और जो लोग रचनात्मक काम करते हैं, लेखक, कलाकार, फिल्म मेकर, उनके लिए तो ये किताब एक खजाना है। नायक की यात्रा जैसे सार्वभौमिक पैटर्न का इस्तेमाल करके वो ऐसी कहानियां रच सकते हैं जो लोगों के दिलों को सीधे छू जाएं।
हाँ, और आध्यात्मिक सहिष्णुता भी बढ़ती है जब हम समझते हैं कि सभी धर्म ईश्वर के मुखौटे हैं, तो दूसरों के विश्वासों के प्रति सम्मान और समझ बढ़ती है। अंत में संकट से निपटना भी आसान हो जाता है जब हम उसे सिर्फ एक मुसीबत नहीं बल्कि बदलाव और कुछ नया सीखने का एक जरूरी मोड़ मानते हैं।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये रही कि हम सब, चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी साधारण क्यों न लगे, अपनी अपनी कहानी के नायक हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिथ की गहराइयां छिपी हैं अगर हम उन्हें देखना चाहें।
हाँ,
और ये जानना कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली हो सकता है, ये सच में प्रेरणादायक है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात है रूपक और प्रतीक की ताकत। कैसे कहानियां हमें उन सच्चाइयों तक पहुंचा सकती हैं जहां सिर्फ तर्क और तथ्य नहीं पहुंच सकते। और हाँ, वो ब्लिस वाली बात, अपने अंदर की उस सच्ची आवाज को ढूंढना और उस पर चलने का साहस करना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया में अपना अनूठा योगदान देने के लिए भी जरूरी है।
चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
हाँ जरूर।
आपके अपने जीवन की कहानी में नायक की यात्रा का कौन सा चरण आप अभी अनुभव कर रहे हैं? क्या आप किसी बुलावे को सुन रहे हैं, किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, या वापसी की तैयारी में हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।